जय धवला पुस्तक 15वी लेक्चर नंबर 17 ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौवसाहूणं मुनिय परमर्थ विथर मुनिवर वीरेः सिद्ध विजयेः जासन्तु अभयवदी पश्यौ सुयदेवयामच्छं सुसुदेवयाय भक्ति सुदो वजोगो वभावियो सम्मम् आवहैनान सिद्धिं नानफलं चाविनिर्वाणं तो सुवदेवयमिनमु लिखुत्तोपणमियून भक्ति वोच्छामि जनासुत्तम् चारित्तमोहस्य खवनविहिम्। यह श्री बीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है जिनके कर्ता हैं गुणधर भट्टारक तथा यति उषभ आचार्य जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 15वीं पुस्तक में चारित्र मोक्ष अपना का अर्थाधिकार चल रहा है अपना और हम पृष्ठ संख्या 127 पर आ गए 127। बात अभी ये बात चल रही है तो जो शपक है पुष्टि करने वाला और पुष्टि बेदने वाला तो उसके पूर्वबद्ध कर्मों की क्या क्या अवस्था है कहाँ कहाँ बंधे थे कौन से गतियों में कितने भवों में उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। तो हमने देखा था कि दो गति के जो पूर्वबद्ध कर्म तो नियम से होते ही है कौन से दो गतियों के तिर्यंच गति और मनुष्य गति देव गति और नर गति के भजनीय है वो भी सकते नहीं भी हो सकते उसको भजनीय कहेंगे। अब कहेंगे ये जो कितने भव करके आते हैं कितने भव करके तो तिर्यंच गति ने एक इंद्रियों के असंख्यात भव हो जाते हैं क्योंकि कर्म स्थिति प्रमाण काल में से त्रस पर्याय का काल जो बीता है वो माइनस करेंगे तो हाँ वो देख रहे कर्म स्थिति ने कर्म स्थिति कितनी होती है अभी ऐसे डायरेक्ट सामान्य से कर्म स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागर कहते हैं और यहाँ विशेष चारित्र मुनि की बात है तो 40 कोड़ाकोड़ी सागर वो उसकी मैक्सिमम स्थिति है उसको कर्म स्थिति कहेंगे। भले एक इंद्र ने कम भी बांधा है परंतु कर्म स्थिति तक उसका उत्कर्षण होकर वो सत्ता में पड़े रह सकते हैं परमाणु तो उस अपेक्षा से उतना काल यदि बीत जावे तो वो निकल ही जाने वाले उससे ऊपर तो नहीं रह सकते सत्ता में इतने काल भी रह सकते ऐसी कोई गारंटी नहीं है परंतु मैक्सिमम इतना तो रह सकते हैं। चालीस कोड़ाकोड़ी की होगी हाँ उसके बिना ये कर्म स्थिति कह नहीं सकते कर्म स्थिति तक वो परमाणु है उसका अर्थ ही ये है। पहले भी बात निकली थी और तभी आप लोगों ने कहा कि वो नीचे के हाँ क्योंकि उसके ये ऐसे माने बिना उसको सिद्ध ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहां तो एक सागर का ही बंद है परंतु कर्मों की स्थिति चारित्र मुनि में कितनी स्थिति है शक्ति है तो 40 कोड़ा कोड़ी हाँ यानी वो संकलेश परिणाम के वश वो तो उत्कर्षण उसके नए बंधने वाले के साथ उसका उत्कर्षण हो सकता है उस अपेक्षा से ही बात यानी इतने काल तक वो सत्ता में रह सकते परमाणु तो एक इंद्रियों की कितने भव उसमें आ सकते हैं तो कहते हैं असंख्या क्योंकि पूरे कर्म स्थिति प्रमाण काल में से क्या क्या घटाना है क्योंकि सत्ता में कर्म कहाँ तक रहेंगे 40 कोड़ा कोड़ी सागर अब जो एकेंद्रियों के भव भीता है उसी के बाद त्रस में आया है। त्रस का पूरा मैक्सिमम भी काल लेंगे तो कितना है 2000 सागर। और ये वो त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल है, इससे अधिक जीव त्रस पर्याय में नहीं रह सकता। लगातार त्रस मरकर त्रस हो गए उसमें फिर वो एकेंद्रिय हो ये सॉरी ये दो इंद्रिय हो कि पंचेन्द्रिय हो कि चतुर्द्रिय तीन इंद्रिय पर्याप्त है कि अपर्याप्त है उससे कुछ नहीं लेंगे। त्रस में रहने का काल जिसको साधिक 2000 सागर कहते हैं।
तो वो सब आ गया वो मनुष्य का।
हाँ मनुष्य के लगातार भव वो सब आए, देवों के इतने भव किए, नरक के इतने भव किए, वो सब उसी में आ गए। हालांकि बात तो ये कहते हैं कि 40 कोड़ा कोड़ी टोटल है, उसमें त्रस में कितना बिताया तो 2000 सागर, बाकी कितना कहाँ बिताया एक इंद्रिय में। त्रस और एक इंद्रिय की बात करें, त्रस और स्थावर की बात करें, बाकी कहाँ बिताया तो स्थावर में बिताया। वो तीरेंच में भी त्रस में तीरेंच भी ले लेना, परंतु त्रस में कौन से तीरेंच ले, द्विंद्रिय के आगे। अब यहाँ एक इंद्रिय की बात चल रही है, इंद्रिय मार्गणा की बात हम लगा रहे। एक इंद्रिय के कितने भोग किए तो बाकी काल कहाँ बिताया एक इंद्रिय, ये तो नियम से। यानी 40 कोड़ा कोड़ी में से केवल वो 2000 सागर माइनस करो, बाकी इतने जो कोड़ा कोड़ी सागर है वो कहाँ बिता है तो उसमें एक इंद्रिय में बताए। तो 40 कोड़ा कोड़ी में से वो 2000 सागर माइनस कर दो। और निर्लेपन काल का अर्थ क्या होता है, वो कर्म स्थिति यानी जो पहला वाला है बंधा, उसका निर्लेपन स्थान काल यानी एक इंद्रिय में जितना बिताया उसका ले लो। फिर भी उतने कर्म यानी इतने भवों में बंधे हुए कर्म वहां पड़े रहेंगे, ये बात है। नियम से असंख्य, जघन्य रूप से असंख्य। ये जघन्य रूप क्यों, क्योंकि हमने त्रस की उत्कृष्ट स्थिति ली। अब त्रस में आने पर वो कितने साल में, 8 साल के बाद ही वो क्षपक श्रेणी चढ़ गया, तो उसकी अपेक्षा से बात करेंगे तो उसके और ज्यादा भाव हो गए एक इंद्रियों में। तो जघन्य भी असंख्यात और उत्कृष्ट भी असंख्यात, यानी जो क्षपक श्रेणी मान रहा है उसने वहां जो कर्म है पूर्वबद्ध कर्म उसकी बात है। वो पूर्वबद्ध कर्म कितने भवों में बांधे तो एक इंद्रियों के असंख्यात भव में और त्रसों के संख्यात भव कहेंगे। संख्यात में मिनिमम तो एक भव भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट एक इंद्रिय में से आया मनुष्य में आया और वो क्षपक्षय नहीं मांगे। या मैक्सिमम कितने तो 2000 सागर का जितना काल है उतना उसने त्रस पर्याय में बिताए, फिर भी उसके भव कितने हो गए तो संख्यात हो गए। भले वो हजारों करोड़ हो गए फिर भी वो संख्यात कहेंगे हम उसको। ये बात ख्याल में आई। तो इसके बाद ये अभी ये गाथा चल रही थी कि उसने उत्कृष्ट अनुभाग बांधा हुआ है, कभी उत्कृष्ट स्थिति बांधी हुई है। तो उत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग सहित वाले परमाणु यहाँ है कि नहीं है, उस समय बंधे हुए परमाणु यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है। तो कहते कि उत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग के साथ बंधे हुए जरूरी नहीं कि वो है। क्यों, क्योंकि लगातार कर्म स्थिति प्रमाण काल तक लगातार अनुत्कृष्ट बांधता रहे ये बात हो सकती है। तो उसने उत्कृष्ट बांधी नहीं ये भी बात हो सकती है, ये भी यहाँ बताना चाहिए। तो उसको और फिर कषायन के बारे में पूछा था कि क्रोध सहित बांधा है, मान सहित बांधा है, मान को बांधा ऐसा नहीं कहा। मान के उदय में कर्म बांधे थे, क्रोध के उदय में बांधे थे, लोभ के में, वो सभी यहाँ उपलब्ध है। क्योंकि चारों कषाय तो हर जीव को किसी भी गति में क्यों न हो, उसके तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में तो चारों कषायों का पलटना होता ही है। तो यहाँ भी जो पूर्वबद्ध कर्म है वो तो चारों कषायों के साथ बंधे हुए है। यहाँ तक की अपनी बात हो चुकी। अब ये जो हमने गाथा अनुभाग विशिष्ट और स्थिति विशिष्ट देखी थी पृष्ठ के साथ, तो वो 127 पृष्ठ पर अभी उसी भाष्य गाथा की विभाषा कर रहे हैं। यानी यही विषय फिर दोबारा और यहाँ समझाएंगे। विहासा, अब इस भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है। उक्कसठि बद्धानी उक्कस अनुभाग बद्धानी च भजितव्यानी। उत्कृष्ट स्थिति बद्ध बंधनी का, उत्कृष्ट स्थिति बद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बद्ध पूर्व संचित कर्म इस क्षपक के भजनीय है। जब बंधा था तो तो उत्कृष्ट स्थिति सहित बंधा था कि अनुभाग सहित बंधा था, ऐसा कोई कर्म यहाँ अवेलेबल है अभी वर्तमान में? तो कहते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी वो जो कर्म परमाणु है जब बंधे थे तो उनमें क्या उत्कृष्ट स्थिति बंधे हुए कुछ परमाणु यहाँ है अभी? अभी उनमें उत्कृष्ट स्थिति नहीं पड़ी है, क्योंकि कितना ही काल बीत गया है और स्थिति अनुभाग घटते गए हैं, उसकी बात नहीं है। जब बंधे थे तब उत्कृष्ट रूप से बंधे थे, ऐसे कोई परमाणु यहाँ है क्या नहीं है, ये प्रश्न है। तो यहाँ कहते कि उत्कृष्ट स्थिति बद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बद्ध पूर्व संचित कर्म इस क्षपक के भजनीय है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। यह सूत्र सुगम है क्योंकि इस विषय में कारण का कथन अनंतर पूर्व ही कराए है। यानी उसका कथन किया था, उसको उन्होंने समझाया भी था, अब उसी गाथा के जो दूसरा पार्ट है उसको बताएंगे। कोह मान माया लोभो जुत्ते हिम बद्धानी अभजीय उवाणी। अभजीतव्य क्या है? नियम से है। क्रोध मान माया और लोभ में उपयुक्त होने से बद्ध, उसमें उपयुक्त होने ने उस कषाय का वहां परिणमन चल रहा है उस समय में बंधे हुए पूर्व संचित कर्म करना कम हुआ है। कर्म इस क्षपक के भजनीय है, अभजनीय है यानी नियम से, क्योंकि चारों कषायन संबंधी उपयोग अंतर मुहूर्त में परिवर्तमान है। परिवर्तमान का अर्थ लौट कर फिर उसी कषाय में आते हैं। चारों में
तो
वो तो हो गई।
हाँ,
ये अलग है, ये विषय ही अलग है, क्योंकि हमने वो मूल प्रश्न जो गाथा में था, चौथी गाथा के मूल प्रश्न, तो उसमें क्या क्या पूछा गया था? गति पूछी थी, भव पूछे थे, इंद्रिय काय पूछे थे, और फिर ये पूछा था स्थिति अनुभाग और कषाय। तो अभी कषाय के बारे में अंतिम यहाँ ये चल रहा है प्रश्न का उत्तर। तो चारों कषायों संबंधी उपयोग अंतर्मूर्त में परिवर्तमान है, इसका अर्थ है चारों ही कषाय अंतर्मूर्त में पलटते भी रहते हैं और वापस लौटकर उस कषाय पर आते हैं, और चारों ही कषाय में जीवों का परिणमन होता है। ऐसा नहीं कि किसी को क्रोधी आता है और किसी को लोभी आता है। हम तो लेबल लगा देते हैं, नहीं ये बहुत लोभी और ये बहुत क्रोधी है, परंतु उसमें भी चारों ही कषायों का परिणमन अर्ध अंतर्मूर्त में पलटता है। इसलिए उनके सद्भाव में बद्ध पूर्व संचित कर्मों का अस्तित्व इस क्षपक के नियम से पाया जाता है, उसमें किसी प्रकार का विसंवाद नहीं उपलब्ध होता। भले वो एकेंद्रिय से आया हो, अभी रस में कितना काल बिताए उसे कोई बात नहीं, एकेंद्रिय में भी क्रोधमान माए लोग है और त्रसों में भी क्रोधमान माए लोग, तो उनका परिणमन हर समय चल रहा है, हर यानी अंतर्मूर्त में पलट कर उस पर आता है। कदीसु किट्टीसु च ठिदीसु, इस प्रकार मूल गाथा के इस अंतिम अवयव की अर्थ विभाषा यहाँ नहीं कही गई है। छठी मूल गाथा में प्रतिबद्ध दूसरी भाष्य गाथा द्वारा स्थिति और अनुभागों में सभी अभजनियों के यानी नियम वाले एक बार में ही अवस्थान क्रम का ज्ञान कराने वाले हैं, इसलिए इस अभिप्राय से वहीं पर उसका निर्णय जान लेना चाहिए। कौन कौन से स्थिति और अनुभाग वाले यहाँ नियम से पाए जाएंगे ये बात वहां बताएंगे विस्तार से। विशेषार्थ, यहाँ केवल उत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग विशिष्ट कर्मों की बात ली। जो जीव उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग से युक्त कर्मों का बंध कर कर्म स्थिति काल के भीतर ही क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता है, उस क्षपक के उक्त विधि से पूर्वबद्ध कर्म नियम से पाए जाते हैं। किंतु जो कर्म स्थिति काल के भीतर अनुत्कृष्ट स्थिति और अनुत्कृष्ट अनुभाग से युक्त कर्म का बंध कर, बनते समय वो अनुत्कृष्ट था अनुभाग भी और स्थिति भी, यानी उत्कृष्ट नहीं थी, जगन्य नहीं लेना, जगन्य ने मिनिमम, उत्कृष्ट के साथ अनुत्कृष्ट बताना, और जब जगन्य की बात आएगी तो अजगन्य कहना, यानी जगन्य भी अनुत्कृष्ट कहलाएगा। जो उत्कृष्ट नहीं है टॉप मोस्ट, वो सारा अनुत्कृष्ट है। उस काल के भीतर ही, यानी पहले उसने कर्म स्थिति काल के प्रमाण अनुत्कृष्ट स्थिति अनुभव का बंद करके उसी कर्म स्थिति के काल भीतर ही क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता है। उसके उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग से युक्त पूर्वबद्ध कर्म नियम से नहीं पाए जाते। जब बंधे थे तभी वो उत्कृष्ट वाले नहीं थे, अभी बंधे थे तभी की बात है। अभी उन अनुत्कृष्ट रूप से बंधे थे क्योंकि उसने अनुत्कृष्ट रूप से बांधे थे, और बीच में कर्म स्थिति काल प्रमाण काल में बीच में कभी भी उत्कृष्ट का बंध नहीं किया उस जीव ने। तो क्या उसके वो कैसे बंधे थे, अनुत्कृष्ट रूप से बंधे थे। ये बनते समय किस रूप से बंधे थे उसकी चर्चा। वर्तमान में उनकी स्थिति और अनुभाग दोनों ही घट गए हैं क्योंकि अनुभाग कांडक घात और स्थिति कांडक घात हजारों 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 बार होता आया है यहाँ पर। तो अभी वर्तमान की बात नहीं, जब बंधे थे तो कैसे बंधे थे उसकी बात। ऐसा समझना चाहिए। अब ये तो उत्कृष्ट के बारे में बताएं। अब रही चार कषायें, यानी चार किस कषाय के उदय में बंधे हुए कर्म यहाँ पाए जाएंगे, तो सभी कषाय। तो उनमें से प्रत्येक कषाय का काल ही अंतर्मूर्त है। ऐसी अवस्था में किसी भी कषाय के साथ बद्ध पूर्व संचित कर्म इस क्षपक के नियम से पाया जाता है, अतः इस अपेक्षा से उसे अभर्जनीय यानी नियम रूप का नीचे से चौथी
नहीं पाए
भाई। उसने कर्म स्थिति प्रमाण काल में अनुत्कृष्ट ही बांधा है।
अच्छा।
उसने उत्कृष्ट का बंध किया ही नहीं था, तो क्षपक श्रेणी पर जब आरोहण किया तो उसके सारे अनुत्कृष्ट वाले ही है। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा चौथी मूल गाथा की अर्थ विभाषा समाप्त करके अब पांचवी मूल गाथा की अर्थ विभाषा करते हुए आगे के प्रबंध को कहते हैं। एतो पंचमीय मूल गाहाय समुत्कीर्तना, इससे आगे पांचवी मूल गाथा की समुत्कीर्तना करते हैं। यह सूत्र सुगम है। तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ पांचवी मूल गाथा शुरू हो जाती है। ग्यारह मूल गाथाएं बताने वाले हैं, है ना? याद नहीं। अभी हमने चौथी देखी, अभी पांचवी की शुरुआत। वो गाथा पहले बता रहे हैं। पच्चत्ता पच्चेते तथाथि पुण्यवंशयमिसेन सम्मते मिच्छते केन वजोगो वजोगेन। पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था के साथ स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद के साथ सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के साथ तथा किस योग और किस उपयोग के साथ पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के पाए जाते हैं। यानी सभी मार्गणाओं की बात यहाँ चल रही है। पहले तो उन्होंने गति बताया, इंद्रिय बताया, काय बताया है, उसमें कषाय भी बात की, अनुभाग तो वो किस इन्हें बंधे हुए की बात थी। अब यहाँ हम रुकनाओं में बताएं, क्या पर्याप्त अवस्था में बंधे हुए ही सभी कर्म यहाँ पर है कि अपर्याप्त अवस्था में भी बंधे हुए है, ये बात पूछ रहे। ऐसे ही स्त्रीवेद के साथ बंधे हुए है कि पुरुषवेद के साथ, सास का अर्थ होता है उसके उदय में बंधे है कि नहीं, ये बात। प्रश्न चिन्ह चाहिए, किस योग के साथ पाए जाते हैं। देखो यह मूल सूत्र गाथा पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थाओं में कथा वेद कौन सा वेद उन्होंने तो तीन नाम लेकर बताया सम्यक्त्व योग ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग मार्गणाओं में यानी उपयोग में किस उपयोग के साथ पूछा था किस योग के साथ बंधे हुए ये भी पूछा था तो कहते वेद सम्यक्त्व योग ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग मार्गणाओं में पूर्वबद्ध कर्म के क्षपक श्रेणी में भजनीय और अभजनीय पने का कथन करने के लिए अवतीर्ण हुए बताएंगे अभी उसका यहाँ तो केवल प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर अब बताएंगे वह जैसे पज्जत्ता पज्जत्तेन पर्याप्त और अपर्याप्त तो त और अ मिलकर ता हो गया ऐसा कहने पर पर्याप्त अवस्था और अपर्याप्त अवस्था में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म क्या इस क्षपक के पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते पर्याप्त अवस्था में बंधे हुए यहाँ कुछ पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे ये प्रश्न है इस प्रकार पूर्व गाथा सूत्र में जो गति इंद्रिय और काय चाहिए कार्य हुआ है वहां पर गति इंद्रिय और काय मार्गणा कहे आए हैं उन्हें ही पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था से विशिष्ट करके यानी गतियों में अपर्याप्त अवस्था लगानी है इंद्रियों में एक इंद्रियों में अपर्याप्त इंद्रिय पर्याप्त आदि भी लगाना है हाँ काय में भी लगाना है तो यह पृच्छा की गई जाननी चाहिए तथा थी पुनसे इस प्रकार कहने पर स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुसक वेद पर्यायों में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म क्या एक शपक के पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते इस प्रकार पृच्छा के साथ संबंध करना चाहिए तो नपुसक वेद के साथ बंधा हुआ पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा हाँ क्योंकि एक इंद्रियों के असंख्यात बहु है वहां तो नपुसक वेद ही था और क्षपक जो है वो तो पुरुष वेद ही है इस प्रकार इससे वेद मार्गणा में पूर्वबद्ध कर्मों के भजनीय और अभजनीय स्वरूप से इस क्षपक के अस्तित्व की परीक्षा पृच्छा द्वारा निर्दिष्ट की गई जानना चाहिए ये विषय पूरा नया है हमारे लिए हाँ इंटरेस्टिंग है क्षपणासार में भी इसके बारे में कुछ नहीं आया है क्षपणासार जो है अपने विलब्धिसार क्षपणासार इसमें अभी तक का विषय तो पूरा रिपीटेड था ये बिल्कुल नया विषय है हाँ अच्छा और उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा बताया यानी अभी जो गाथा में पूछा गया था तो पर्याप्त और पर्याप्त बारे में पूछा है और कौन से वेद सहित बंधे हुए उसकी बात पूछी है अब आगे कहते निश्चयन सम्मत्ते मिच्छत्ते ऐसा कहने पर सम्यक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों में पूर्वबद्ध कर्म क्या इस क्षपक के है या नहीं समय मिथ्या दृष्टि होने की कोई आवश्यकता है नहीं ना उसके तीसरे गुण स्थान में जाना ही पड़े ऐसे थोड़ी है मतलब मिथ्या तो में से तो आया वहां तो मिथ्या तो में बंध रही क्योंकि एक इंद्रिय में असंख्यात भोग पिता है और फिर इसमें समय दृष्टि होगा तो ही क्षपक से नहीं चढ़ेगा तो उसने भी बांधे हुए है हमने पढ़ा नहीं परंतु हम स्वयं उसका अंदाजा तो लगा सकते हैं देखो तो समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों में पूर्वबद्ध कर्म क्या इस क्षपक के है या नहीं इस प्रकार पृच्छा के संबंध से सम्यक्त्व मार्गणा में पूर्वबद्ध कर्मों के भजनीय और अभजनीय स्वरूप से इस क्षपक के गवेषणा सूचित की गई जाननी चाहिए यानी यहाँ सम्यक्त्व मार्गणा लगा पहले वेद मार्गणा बताई उन्होंने और 20 प्ररूपणाओं में से पर्याप्त पर्याप्त वो बता दिया केन व जोगो व जोगेण जोगो व जोगिन का अर्थ होता है योग और उपयोग इस प्रकार सूत्र के इस अवयव से भी योग मार्गणा में यानी वहां काय योग वचन योग मनोयोग की बात और उपयोग में ज्ञान और दर्शन उपयोग को लेना तथा ज्ञान और दर्शन उपयोग मार्गणा में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय रूप है या अभजनीय रूप से है यह परीक्षा निर्दिष्ट की गई जाननी चाहिए ये प्रश्न ख्याल में आ रहे हैं ना पहले तो उन्होंने कौन सी मार्गणा देखी, अभी हमने पर्याप्ति की प्ररूपणा देखी, फिर वेद मार्गणा देखी, अब सम्यक तो मार्गणा की बात बताई, उसके बाद योग और उपयोग। योग के 15 भेदों में से, नितिन भाई आपको मालूम है 15 भेद?
हाँ,
चार मनोयोग, चार वचन योग और सात काय योग। कौन से सात काय योग मंजू बहन? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैकृत वैकृत मिश्र, हाँ, आहार कारक मिश्र, कारमाण काय योग, ये काय योग के सात प्रकार है। तो ये 15 भेदों में से, योग के 15 भेदों में से वहाँ किस योग के साथ पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय हैं और किस योग के साथ पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय नहीं है, यह परीक्षा की गई जाननी चाहिए। उसी प्रकार सात छद्मस्थ ज्ञानों में, ये सात छद्मस्थ ज्ञान कौन से है? हाँ प्रेरणा बहन, सात, हाँ, केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी सब छद्मस्थ अवस्था में कौन कौन से होते हैं? कुमति, कुश्रुत, विभंग और मति, श्रुत, अवधि और मनपर्य। ये सात छद्मस्थों के ज्ञान, यानी तीन कुज्ञान और चार सुज्ञान। तो सात छद्मस्थ ज्ञानों में और तीन दर्शनों में, ये तीन दर्शन कौन से थे? जब दर्शन उपयोग कहने आपको, वो समय दर्शन वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, मंजू बहन, हाँ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, आपने नाम सुने ना कि नहीं?
हाँ
हाँ, कोई बात नहीं। किस ज्ञानोपयोग और किस दर्शन उपयोग के साथ पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है, तथा किस ज्ञानोपयोग के साथ और किस दर्शनोपयोग के साथ पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय है, नियम रूप किसका है और नियम किसका नहीं है, तब मति श्रुत वाले को तो ले ही लेंगे, कुमति कुश्रुत को भी लेना ही है, अभी बाकी की बात बताएंगे। इस प्रकार पृच्छा द्वारा यह गाथा सूत्र इस प्रकार के अर्थ का निर्देश करने में प्रतिबद्ध देखा जाता है। अब इस गाथा द्वारा सूचित हुए अर्थ विशेषों की विभाषा करने के लिए चार भाष्य गाथाएं हैं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। एत्थ चत्तारी भाष्यगाहाओ, इस मूल गाथा के अर्थ की प्ररूपणा में चार भाष्य गाथाएं निबद्ध हैं, यह सूत्र सुगम है। उत्तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। पहले तो हमने मूल गाथा देखी थी पांचवी, अभी उसी की भाष्य गाथा बताए, चार भाष्य गाथा बताने वाले हैं, उसमें से ही पहले। पज्जत्ता पज्जत्ते मिच्छत नंसये च सम्मत्ते कम्मानि अभज्जानि दो हि पुरुषे मिस्सगे भज्जान। पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में तथा मिथ्यात्व, नपुसक वेद और सम्यक्त्व मार्गणा में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय। प्रश्न तो अलग अलग बातें पूछी थी, उनको सबको जो अभजनीय उनको एक साथ बता दिया, किंतु स्त्री वेद, पुरुष वेद क्यों लिया? स्त्री वेद, अच्छा, पुरुष वेद और मिश्र मार्गणा में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय, बात सही। देखो क्या कहना चाहते हैं, यह प्रथम भाष्य गाथा पर्याप्त और अपर्याप्त जीव समासों में, ये जीव समास पर्याप्त अपर्याप्त मालूम है? 14 है, अच्छा, हाँ। तो अपर्याप्त कितने में होते हैं और पर्याप्त कितने में होते हैं? 14 में से अपर्याप्त कितने और पर्याप्त कितने? सात सात है, हाँ, बोलो 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 आप बोलो, सात कौन से है जिसके पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी? हाँ, आप बराबर नहीं बोल रहे, सूक्ष्म एकेंद्रिय बादर एकेंद्रिय, फिर द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय संगी पंच, ये मूल सात भेद होते हैं, सभी में पर्याप्त लगाना, सभी में अपर्याप्त। तो ये कहते हैं पर्याप्त और अपर्याप्त जीव समासों में तथा वेद और संयुक्त मार्गणा में प्रकृत अर्थ का निर्णय करने के लिए अवतीर्ण हुई है, ये भाष्य गाथा उसका निर्णय करने के लिए है। वह जैसे पज्जत्ता पज्जत्ते ऐसा कहने पर पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था के साथ पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं, ऐसा इस सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। क्योंकि कर्म स्थिति काल में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही भोग किए हैं उसने, जितेंद्रियों के असंख्यात हुए तो उसमें तो सवाल ही नहीं, पर्याप्त अपर्याप्त सब हुए होंगे। यानी वो तो नियम बताए उसका नियम से, क्योंकि कर्म स्थिति के भीतर पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों पर्यायों के अवश्य ही होने का नियम है, इसलिए पूर्वबद्ध कर्म यहाँ पर अभजनीय है ऐसा निश्चय करना चाहिए। कौन सा पूर्वबद्ध? पर्याप्त व पर्याप्त के साथ वाला। मिच्छन्त नंसयेच सम्मत्ते ऐसा कहने पर मिथ्यात्व तो पर्याय में, नपुसक वेद पर्याय में और सम्यक्त्व पर्याय में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय यानी नियम से, क्योंकि हमने देखा एक इंद्रिय में इतना लंबा काल रह के इतने भोग करके आए तो वहां तो नपुसक वेद में बंधा हुआ कर्म था, तो अभजनीय यानी वो नियम रूप से है तो उसके तो है ही है। मिथ्यात्व पर्याय में हाँ इतने लंबे काल तक मिथ्यात्व में था उसके भी वहां पर भी बंधे हुए भी पड़े हैं, और सम्यक तो पर्याय में क्योंकि सम्यक दृष्टि होगा तभी जाके ऊपर क्षपक श्रेणी चढ़ेगा, तो सम्यक दृष्टि भी उस पर्याय में, तो जिस पर्याय में उसको क्षपक श्रेणी चढ़ना है उसमें तो सम्यक तो उसके होगा ही होगा उसके पहले। हाँ हाँ सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा मिथ्यात्व और सम्यक के लिए, सम्यक मिथ्यात्व तो भजनीय में डालेंगे क्योंकि जरूरी नहीं कि जो तीसरे गुणस्थान में आए ही, नहीं भी आए उसके बिना एक क्षपक श्रेणी चढ़े। मिथ्यात्व के साथ बंधा हुआ कर्म की बात चल रही है, अभी उसके मिथ्यात्व है कि नहीं उसकी चर्चा नहीं है। ये सब बातें क्या है, कौन सी अवस्था के साथ उसने कर्म का बंधन किया, मिथ्यात्व अवस्था में किया हुआ क्या अभी है कि नहीं है, कि लंबे काल तक समय दृष्टि रहा तो उसने मिथ्यात्व में बांधा हुआ सभी कर्म नष्ट हो गए ऐसा होता है, तो कहते नहीं मिथ्यात्व में बांधा हुआ वो अवश्य ही पाया जाएगा यहाँ पर। पुष्टि वेदक के बाद पुष्टि वेदक के जीव के कौन सा बंधा हुआ कर्म अभी वर्तमान में है उसकी बात चल रही, नपुसक वेदी जब था ये जीव तभी बंधा हुआ कर्म लेना, यहाँ नपुसक वेद का कर्म है कि नहीं उसकी बात ही नहीं है क्योंकि ये तो अपगत वेदी है, पुष्टि करने के समय कहाँ है नपुसक वेद। हाँ वो बंधे हुए जो कर्म थे अभी वो जो ओरिजिनल थे वो तो अभी कषाय रूप हो गए, परंतु ये कब बंधे थे, नपुसक वेद के उदय में बंधे थे कि नहीं बंधे थे, तो हाँ वो तो नियम से है परमाणु। ऐसा ही सूत्र और अर्थ का परस्पर संबंध करना चाहिए, उनमें से मिथ्यात्व पर्याय और नपुसक वेद पर्याय कर्म सिद्धि के भीतर अवश्यम भावी है, क्योंकि इनकी प्राप्ति के बिना कर्म स्थिति की समाप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। यानी इतने लंबे काल कर्म स्थिति का जो काल है वो अवश्य ही मिथ्यात्व में रहेगा कुछ काल, सम्यक तो पर्याय भी यहाँ पर अवश्यम भावी ही है क्योंकि उसके बिना क्षपक श्रेणी पर आरोहण करना असंभव है, ये तो जाहिर है वो तो बताने की भी आवश्यकता है, फिर भी मूल गाथा में तो बताएंगे। इसलिए इन पर्यायों में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्व में बंधे कर्म जीव जब इन पर्याय में था, इन अवस्थाओं में था, तब जो कर्म बांधे थे वो अभी यहाँ इसके है, विद्यमान है, इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं। इस प्रकार उक्त मार्गणाओं में पूर्वबद्ध कर्म, मार्गणाओं के जीवन ने ये बंध कर्म बांधे थे। अभी अपना कर्मकांड का विषय चल रहा है ना, कौन सी मार्गणा में वो नाम कर्म के बंध है, इसकी हम चर्चा करें शाम को। यहाँ कौन से मार्गणाओं ने बांधा हुआ कर्म अभी यहाँ विद्यमान है, उसकी बात चल रही है। वो किस अवस्था में है, क्या है, उसकी बात नहीं चल रही। तो कौन कौन सी मिथ्यात्मक की बात की, संपुसंग वेद वालों के लिए और संयुक्त के लिए, उसके पहले पर्याप्त पर्याप्त दोनों वालों को लिया। अब विशेषार्थ कर्म स्थिति काल के भीतर यह जीव अनेक बार पर्याप्त भी हुआ है और अपर्याप्त भी हुआ है, साथ ही त्रस पर्याय की काय स्थिति साधिक 2000 सागरोपण है। काय स्थिति का अर्थ क्या देखा था हमने, त्रस काय ना, षटकाय में त्रस काय की बात है, तो त्रस जीवों की काय स्थिति ने, अब वो त्रस में ही लगातार जन्म मरण करता रहे तो लगातार लंबे काल कितने हैं, तो साधिक 2000 सागरोपण। ये जब साधिक कहते हैं तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को लेना, अकेले पर्याप्तों की बात करेंगे, त्रस पर्याप्त तो 2000 सागर होते हैं। अतः उसका कर्म स्थिति के भीतर नपुंसक वेद और मिथ्यात्व के साथ एकेंद्रिय पर्याय में रहना भी अवश्यंभावी है। आप अगर वो एक सागर की बात करते हैं तो ये तो घटित ही नहीं होता, यानी कर्म स्थिति ने पूरी कर्म स्थिति प्रमाण लेना चाहिए उसका। मिथ्यात्व के बारे में, मिथ्यात्व में बंधे हुए परमाणु पाए जाते हैं तो मिथ्यात्व का तो कर्म स्थिति वो 70 कुड़ाकुड़ी लेनी पड़ेगी, उस समय बंधे हुए कर्म की बात, जो बंधे थे उसमें कितनी स्थिति बंधी है उसकी बात नहीं है, जिस समय बंध हुआ था वहां कितनी स्थिति बंधी उसकी बात नहीं, किस अवस्था में बांधे तो मिथ्यात्व अवस्था में बांधे। मिथ्यात्व अवस्था में भले कम स्थिति वाला एक इंद्रिय तो सागर वाला बांधा होगा, परंतु उसकी कर्म स्थिति कितनी पकड़ेंगे, 70 कोड़ाकोड़ी से। इस प्रकार तो पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था के साथ नपुंसक वेद मार्गणा और मिथ्यात्व गुणस्थान में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं। साथ ही यह भी नियम है कि सम्यक्त को प्राप्त करने के बाद ही इस जीव का संयम पूर्वक क्षपक श्रेणी पर आरोहण करना बन सकता है, इसलिए सम्यक्त मार्गणा में पूर्वबद्ध कर्म इस जीव के नियम से पाए जाते हैं। सम्यक्त के साथ उसी को सम्यक्त मार्गणा कह दिया उन्होंने, थी पुरी से मिस्से बच्चा, ऐसा कहने पर स्त्री वेद पुरुष वेद वेद हुआ, वेद और सम्यक मिथ्या तो पर्याय में इस जीव के द्वारा बांधे गए कर्म इस क्षपक के भजनीय है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कर्म स्थिति के भीतर इन मार्गणाओं के अवश्य होने का नियम नहीं पाया जाता। यानी ऐसे एक इंद्रियों में लंबे काल तक भटक के आया है और वहां से नपुंसक वेद के साथ ही मनुष्य हुआ और उसी भूमि में मोक्ष चला गया, ये हो सकता है। यानी स्त्री पुरुष वेद पाए उसमें बंधे हुए कर्म की बात नहीं है, उसमें गए बिना भी उसके मोक्ष प्राप्ति है, ये बात बताना चाहते। वैसे तीसरे गुणस्थान, पहले मिथ्यात्व में से आया है, अब यहाँ आया है, समय दृष्टि हुआ है, तीसरे में गया ही नहीं, तो वहां भी बंधे हुए उन कर्मों की कुछ भजनीयपना है, यानी नियम नहीं होने का। सासाधन समय दृष्टि के द्वारा बद्ध कर्म भी इस क्षपक के भजनीय है, इस अर्थ का भी यहाँ व्याख्यान करना चाहिए। उसका नाम भले नहीं लिया है परंतु सासाधन के साथ भी यही नियम लगाना कि जरूरी नहीं कि जो सासाधन में जाए और फिर ही ऊपर चले, क्योंकि यहाँ पर इस मिश्र पद के निर्देश की देशामर्शक रूप से प्रवृत्ति स्वीकार की गई है। یہ دیشامرشک کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو نیتن بھائی؟ کیونکہ ہم نے اس کو بہت بار دیکھا ہے یہاں پر. آپ تبھی تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں تھے, تھے معلوم ہے. منجو بہن آپ کو ہاں تھوڑا بتایا ہے, تو ایسا ہی انیہ پر بھی لاگو ہوتا ہے. کسی ایک کا نام لیا تو وہاں انیہ بھی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہم نے ہمارے آم کا بغیچہ ہے, ہم کہیں تو وہاں انیہ وکش ہے نہیں کیا, تو آم کا ایک کا نام لیا تو انیہ بھی وہاں ہے. یا کوئی نیم بتانا ہے تو ایک کا نام لے کے بتایا, انیہ پر بھی لاگو ہوتا ہے. تو ایسے سمے متھیاتو کا نام لیا تو ساسادن میں بھی ایسا ہی سمجھنا کہ وہ تو بھجنی ہے. اس کا ارتھ ہے وہ ساسادن میں جیو آئے گا ہی, کہ کوئی بات نہیں ہے. بنا اس میں گئے بھی شپک سے نہیں چڑھے گا. یعنی کرم استھتی کے کال میں کی بات چل رہی ہے. وشیشارتھ کرم استھتی کے بھیتر کوئی جیو ایکندریہ پریائے سے استری ویدی اور پروش ویدی ہوئے بنا سیدھا نپسک وید کے ساتھ منشیہ اور سمے دشٹی ہو کر تتھا سمے متھیا دشٹی اور ساسادن سمے دشٹی نہ ہو کر سنیم پوروک شپک شینی پر آروہن کرے یہ سمبھو ہے. یہی کارن ہے کہ اکت مارگناؤں میں باندھے گئے کرم اس شپک کے ابھجنی کہے ہیں. ابھجنی کیوں ہے میرا پرشن؟ بھجنی ہونا چاہیے استری وید پروش وید سمے متھیا دشٹی اور ساسادن उक्त मार्गणाओं में बात है ना, बांधे हुए कर्म इस क्षपक के वो भजनीय क्यों कहे मेरा प्रश्न है. उपरोक्त ने वो पहले वाले लिए और बाद में वो तो ये क्लियर नहीं हो रहा है. विशेषार्थ में क्या बताया उन्होंने? सीधा नपुसक वेद के साथ आरोहण करके हो सकता है. यही कारण है कि उक्त मार्गणाओं में बांधे गए कर्म इस क्षपक के अभजनीय कहे. तो उक्त मार्गणाओं का अर्थ क्या है? मिथ्या तो नपुसक वेद. یعنی ان کے کتھن سے یہ بات سدھ نہیں ہوتی ہے. یہ اکت مارگنا کرتے تھے متھیا تو نپسک وید اور سمیت باندھے گئے کرم اس چھپک کے ابھجنی ہے نیم سے, کیونکہ جو کرم استھتی کے بھیتر اکت مارگناؤں میں سے ویوکشت کسی مارگنا کو پراپت کر क्रमशः क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता है तो उसके तो पूर्वोक्त विवक्षित मार्गना में बांधे गए कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं. और जो कर्म स्थिति के भीतर शेष मार्गनाओं में से किसी भी मार्गना को प्राप्त हुए बिना क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता है उस क्षपक के उक्त मार्गनाओं में बांधा गया कर्म इस क्षपक के नियम से नहीं पाया जाता. अभी शेष मार्गणाओं में उसको लेना है स्त्री वेद पुरुष वेद सम्य मिथ्यात् और सासादन. इसीलिए शेष मार्गणाओं की अपेक्षा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय कहे. ये पूर्वोक्त और उपरोक्त की बात है और शेष मार्गणाओं में अन्य को लिया. अब इसी गाथा सूत्र का स्पष्टीकरण करने के लिए आगे के विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं. ये तो भाष्य गाथा हुई, अब उसकी विभाषा करेंगे। विहासा, अब प्रथम भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है। पज्जत्तेन अपज्जत्तेन मिच्छा इच्छिना सम्मा इच्छिना नौ से वेदेन च एवं भाव भूदेन बद्धानी नियमा अथि। पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था से युक्त मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नपुसक वेद, इस प्रकार इन भावों से परिणत जीव के द्वारा बद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं, इसलिए अभजनीय है, यानी नियम से। ये तो गाथा में बताई गए थे। अभी आगे कहते हैं, इत्थिये पुरिसेन सम्मा मिच्छा इच्छिना च एवं भाव भूदेन बद्धानि बच्चानि। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, सम्यक मिथ्या दृष्टि, इस प्रकार इन भावों से परिणत जीव के द्वारा बद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है, भजनीय वह हुआ है, भजनीय है। तो यहाँ पर स्त्रीवेद के परमाणु है कि नहीं है? हाँ हाँ, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। हमने क्या पूछा, स्त्री वेद के परमाणु यहाँ पर है कि नहीं सत्ता में? अभी अभी तो नहीं है, पर इसके पहले थे कि नहीं थे? स्त्री वेद के साथ बंधे हुए की बात नहीं पूछी? स्त्री वेद के परमाणु अभी तो अवगत वेदी है, वो अवगत वेदी होने के पहले थे कि नहीं थे? वो तो लंबे काल तक नपुंसक वेद में रहा और फिर वहां से उसने फिर मनुष्य पर्याय पाई, फिर नपुंसक वेद में रहा और फिर वो आया है अभी तो शपक श्रेणी उससे शुरू कर की अभी, तो उस समय उसके स्त्रीवेद के परमाणु सत्ता में है कि नहीं, मेरा प्रश्न। बंधे उच्चुति कब हुई? जब सम्यक दृष्टि हुआ तब। उसने मिथ्या तो अवस्था में स्त्रीवेद को बांधा हुआ परमाणु अभी यहाँ विद्यमान है कि नहीं, मेरा प्रश्न। तो क्या हुआ, एकेंद्रीय जीव स्त्री वेद को पुरुष वेद को बांधते कि नहीं बांधते? उसका उदय नपुंसक वेद का चल रहा है, होना ही चाहिए, क्योंकि हर जीव जो क्षपक श्रेणी पर चढ़ता है पहले नपुंसक वेद की क्षपणा करता है, फिर स्त्री वेद की करता है, फिर पुरुष। परमाणु तो सभी बंधे थे ना, किस अवस्था में किसके उदय में बांधे थे वो अपना विषय चल रहा है, परंतु उसके साथ हम ये नक्की कर रहे हैं कि सत्ता में वह कर्म पड़े है कि नहीं पड़े। हम देखते हैं ना, पहले इसकी क्षपणा की, फिर उसने तीर्थंकर के जीवन में भी वो पहले नाम कर्म की 13 प्रकृति और वो दर्शन होने की 3-16 की क्षय किया था कि नहीं किया था, कि उनके सत्ता में नहीं था, ऐसा तो ही नहीं है। देखो इससे बात कुछ क्लियर होती है। अभी 2000 सागर की बात हम कर रहे हैं, जरूर नहीं हर एक को इतनी लंबी त्रस पर्याय मिले और उसकी त्रस पर्याय भी समाप्ति को हो गई और उसने समय दृष्टन हुआ, उसको मुनि भी हो गया उस पर्याय में और क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ी, तो क्या करेगा? एक ही में जाना है ना, उसकी त्रस पर्याय समाप्त हुई है, समय दृष्टि हुआ कि नहीं हुआ इससे कुछ नहीं लेना देना, छुटने का एक ही मार्ग, एक क्षपक श्रेणी पर चढ़कर मोक्ष चलेगा, नहीं तो वापस एक ही दिन में जाना है। हमने देखा ना कितने ही जीव ऐसे सूक्ष्म निगोद आदि में पड़े हैं, असंख्यात जीव पड़े हर एक जीव समास में, यानी क्या है, हम ऐसा कहने की पद्धति ना, समय दृष्टि नहीं हुआ तो त्रस पर्याय में से उसको एक ही दिन में जाना पड़ेगा, अरे समय दृष्टि हुआ तो भी जाना पड़ेगा, साथ नहीं जाएगा वो, तो जिसका काल पूरा हुआ है तो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा, वो तो अभी मुझे जाना है मिथ्यात्व में, ऐसा कुछ नहीं।
काल की जाते वो सेकंड गुना स्थान में भी जा सकते हैं,
जाते हैं ना, उसके ना नहीं है,
छूटा नहीं है ना,
छूट गया ना, सासाधन ये नहीं छूट गया, सासाधन का अर्थ सम्यक्त्व का भ्रष्ट हो गया, सासाधन का अर्थ है भ्रष्ट सम्यक दृष्टि, आसाधन के आगे सम्यक्त्व लगाते हैं, यानी जिसने सम्यक्त्व की आसाधना विराधना की है ऐसा, यानी कौन अभी वो सम्यक् दृष्टि नहीं रहा, छूट गया उसका, और मिथ्यात्व में अभी जाने ही वाला है, बीच वाले जा सकते हैं, जा सकते वो बात नहीं, चारों ही गतियों में जो समय दृष्टि भी है, सासाधन वाले भी है, तीसरे गुणस्थान वाले भी है, पहले वाले भी है, यहाँ तो अपनी विषय अपना किस अवस्था में बंधे थे उसकी बात चल रही। उसके साथ मैंने अपने से प्रश्न किया कि वो परमाणु वहां पाए जाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो जब तक अपगत वेदी नहीं हुआ तब तक वो तो है, वेद वाले परमाणु भी है, तीनों वेद के परमाणु पड़े रहेंगे, यानी इतने लंबे काल तक हमें क्या लगता है नपुंसक वेदी रहा ना, हाँ रहा, परंतु वहां रहते हुए स्त्री पुरुष वेद का बंध तो कर सकते हैं, और वहां भी बंध की भी बात, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में परिणाम ऐसे चेंज होते हैं, तो उसके ऊपर ये सारे सहज रूप से अवस्थाएं बनती है इससे, यानी कितना ऑटोमेटिक है ये तो हमें पता चलता है। देखो स्त्री वेद पुरुष वेद और सम्यक मिथ्या दृष्टि, इस प्रकार इन भावों से परिणत जीव के द्वारा बद्ध कर्म शपक के भजनीय है, यानी स्त्री वेद के उदय वाले पुरुष वेद के उदय वाले ये जीव यहाँ हो भी या नहीं भी हो, उस समय बंधे हुए परमाणु की बात उसकी बात चले, ये दोनों ही सूत्र सुगम है, इतनी विशेषता है एवं भाव भूदेना है, ऐसा कहने पर इस प्रकार के भावों से परिणत जीव भावभूत ने उस प्रकार के भाव से परिणत हुए हैं, जीव के द्वारा बद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय और अभजनीय स्वरूप से पाए जाते हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार प्रथम भाष्य गाथा की विभाषा समाप्त हुई, यानी भजनीय कौन से बद्ध वाले हैं और अभजनीय कौन से उन्होंने बता दिया, अभजनीय का अर्थ नियम से उसमें मिथ्यात्व नपुंसक वेद और सम्यक्त्व को नियम रूप लिया, श्री पुरुष वेद समय मिथ्यात्व साधन को भजनीय में डाला, एक तो विद्याए भाषगाहाय समुत्कीर्तना, इससे आगे दूसरी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना करते, अभी दूसरी भाष्य गाथा बताते, यह सूत्र सुगम है, तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है, ये योग और उपयोग के बारे में पूछा था मूल गाथा में, अब उसके बारे में भाष्य गाथा बताएं। ओरा लिये शरीरे ओरा लिये मिस्से च जोगे दु चदोविद मनवचि जोगे च भज्जगो से सगे भज्जा ओ भज्जगार भज्जा। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, चारों मनोयोग और चारों वचन योगों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय है, तथा शेष योगों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है। हम अपनी ओर से विचार करेंगे, आहारक रहते हुए इशु गति से जा सकता है, कितने काल तक लगातार आहारक रहे, तो कौन सा बड़ा
है?
फंस गए, वो स्वयं बता रहे हैं कि लगातार आहारक का अर्थ क्या होता है, देखो इस भव में मरा और सीधी गति से एक समय में पहुंचा दूसरे गति में, बीच में कारमान का योग हुआ ही नहीं, आहारक था आहारक रहा, यानी उसके कारमान का योग नहीं हुआ, यहाँ मरते समय औदारिक का योग और वहां डायरेक्ट औदारिक मिश्र हो गया, बीच में कारमान क्योंकि मोड़ वाली गति से गया ही नहीं लगातार, तो ऐसे लगातार अगर चलता रहे तो कितने ऐसे हो सकता है काल, तो कहते अंगुल का असंख्यात भाग जिसमें कितना लंबा काल है, तो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी होती उसमें, अंगुल ये इसको कहते हैं, अंगुल में तो प्रदेशों की संख्या को गिनते, उसका असंख्यात भाग जितना है वो भी पर्टिकुलर असंख्यात है, तो उसको अगर हम समयों में कन्वर्ट करेंगे और उसके वर्ष और ये बनाएंगे कल्प काल, यानी कितने 10 कोड़ा कोड़ी सागर और 10 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, ऐसे असंख्याता संख्यात कल्प का दो, मात्र असंख्यात नहीं कहे, क्योंकि जगन परिता संख्या भी असंख्या होते, युक्ता संख्या भी असंख्यात, और ये तो असंख्याता संख्यात भी असंख्यात है, बहुत बड़ा प्रमाण है। इतने तो कल्प काल है, ये लगातार आहारक रहने का काल है, यानी बिना कारमान का योग हुए बिना इतना लंबा काल तक चलता है कर्म स्थिति, तो उसके आगे कुछ नहीं है। दो क्या? वो आहारक शरीर वाले अलग, आहार मार्गणा की अपेक्षा आहारक जिसको कहना, शरीर के परमाणु को ग्रहण करना वो आहारक है। जब विग्रह गति में मोड़ सही जाता है, एक मोड़ है तो एक समय के लिए अनाहारक, अनाहारक यानी शरीर के परमाणु नहीं ग्रहण किए, कर्म का ग्रहण तो चल रहा है। दो मोड़ सही जाने वाले के मोड़ के पहले दो समय के लिए अनाहारक यानी कारमान का योग है। तीन मोड़ सहित जो जाते हैं, कोई एक इंद्रिय जीव जाते हैं, तो उनके तीन समय तक कारमान का योग यानी अनाहारक है। तो इनके कारमान का योग बीच में, यहाँ तो योग का प्रकरण, बीच में कारमान का योग हुआ ही नहीं है। एक इंद्रिय में लंबे काल तक रहे तो कौन सा का योग था? औदारिक औदारिक मिश्र औदारिक औदारिक मिश्र औदारिक, क्योंकि हर समय औदारिक मिश्र तो इन बिटवीन होगा ही होगा, क्योंकि जब पर्याप्ति चालू होती है तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक औदारिक मिश्र रहेगा, बाद में औदारिक का योग रहेगा। तो लंबे काल एक इंद्रिय में औदारिक मिश्र औदारिक औदारिक मिश्र औदारिक रहा, उसमें से मनुष्य में आया डायरेक्ट हम कहते हैं। अभी वो कारमान का योग हुआ ही नहीं है, तो पहले में पहले कौन सा का योग होगा? औदारिक मिश्र मनुष्य में आया ना, अभी उसी भूमि में जाने वाला है मोक्ष, फिर औदारिक हो गया। परंतु उसके बाद मनोवचन होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अभी क्षपक श्रेणी चढ़ेगा तो पर्याप्त होते उसके मनोयोग वचन योग का योग तीनों ही चलते रहेंगे। एक इंद्रियों में तो औदारिक का योग चला, औदारिक मिश्र का योग चला, और ये ऐसा जीव लिया है कि कारमान का योग हुए बिना ही वो कर्म स्थिति का प्रमाण लगातार एक एक इशु गति से भटकता रहा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे, ये तो हमने अपनी बुद्धि से अर्थ लगाया, मनोयोग और वचन योग तो हो गए संगी पंचेंद्रिय में आया है, मनुष्य में आया है, क्षपक श्रेणी के पहले तो ये तो सभी में पलटना होगा उनका। तो शेष योगों में पूर्वबद्ध कर्म, शेष योग कौन से रहे अभी? वैक्रेक वैक्रेक मिश्र आहारक आहारक मिश्र कारमाण, ये तो भजनीय है, यानी वैक्रेन देव और नरक में गए बिना ही उसके हो सकता है, उसका अर्थ ना वैक्रिक मिश्र हुआ ना वैक्रिक हुआ, ये जरूरी नहीं कि उसके आहारक शरीर बनावे, तो वो भी उसके हुआ नहीं है योग। कर्म बंधे हुए हो गए आहारक के, फिर भी जरूरी नहीं कि उसका तो उपयोग करे, यानी उसका आहारक शरीर बने, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इसके हम अर्थ इसका देखेंगे। यह दूसरी भाष्यगा था, योग मार्गणा में प्रकृत अर्थ की गवेषणा करने के लिए अवतीर्ण हुई। प्रकृत अर्थ कौन सा चल रहा है? पूर्वबद्ध कर्म, कौन सी अवस्था में बंधे थे वे अभी यहाँ विद्यमान है, यह प्रश्न था। तो पूछा गया था कौन से योग में बद्ध कर्म यहाँ नियम से है? औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, चार मनोयोग चार वचन, ये तो नियम से है ही। वह जैसे ओरालिए शरीर ऐसा कहने पर औदारिक का योग औदारिक मिश्र का योग चारों प्रकार के मत योग चारों प्रकार के वचन योग के भेदों में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं, इसलिए वे भजनीय नहीं है यानी नियम से है। इस प्रकार यही सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। ये बात ख्याल में आई? बीच में कारमान का योग हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो लगातार ईशु गति से ही मर कर जाता रहा, क्योंकि वो तो अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक जाता है, जो असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और वो कर्म स्थिति तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर कहो या 70 कोड़ा कोड़ी सागर कहो, क्या इन योगों में बद्ध कर्म इस शपक के अभजनीय इस विषय में कारण का कथन शुभम है। शेषगे बद्ध ऐसा कहने पर वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कर्मण का योग संज्ञक यानी नाम वाला इन योगों में पूर्वबद्ध कर्म प्रदेश इस क्षपक के भजनीय है, क्योंकि ये योग कर्म स्थिति के भीतर अवश्य ही होते हैं, ऐसा नियम नहीं पाया जाता। हमने कहा ना आहारक हो गए इसके कोई जरूरी नहीं है, नहीं ये कायोग की बात है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब इसी सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे का विभाषा ग्रंथ आया है। विभाषा, अब दूसरी भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है। ओरालियेन ओरालिय मिश्रेण चौविहेन मनजोगेन चौविहेन वचिजोगेन बद्धानि अभज्जानि। औदारिक का योग जो गाथा के अर्थ में बताए वही यहाँ फिर विभाषा में बताएंगे। औदारिक मिश्र का योग, चार प्रकार के मनोयोग और चार प्रकार के वजन योग के साथ बद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय है, इसका अर्थ क्या है, नियम से है, तथा शेष योगों में बद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है। ये दोनों सूत्र गतार्थ है, इन्हें उनके पहले अर्थ बता चुके हैं। इतनी विशेषता है कि गाथा सूत्र में ओरालिये शरीरे इस प्रकार सप्तमी विभक्ति का निर्देश किया है, परंतु चूर्णी सूत्र में तो ओरालियेन ओरालिये मिस्सेन इस प्रकार तृतीय विभक्ति का निर्देश किया है। इसलिए इन दोनों वचनों में अविरोध किस प्रकार है, ऐसी पृच्छा होने पर कहते हैं इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि विवक्षा के अनुसार कारकों की प्रवृत्ति होती है, ऐसा न्याय। क्या कहना चाहते हैं अश्विन भाई, इसका अर्थ क्या है, विवक्षा के अनुसार कारकों की प्रवृत्ति होती है, कौन कहना चाहते हैं? लक्ष्मी जी आप बताएंगे, दोषी सर। हाँ, विवक्षा के अनुसार कारकों की प्रवृत्ति होती है, कारक किसको कहें, व्याकरण का ये रूल है। व्याकरण में ना प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति की बात है, कौन सी विभक्ति लगाना। उन्होंने पहले क्या, पहले सप्तमी ने मे लगाया, औदारिक का योग में बंधा हुआ, और अभी कहते औरादिक काय योगे न, ऐसा लिया ना। देखो अभी जो हमने 360 नंबर का पॉइंट पढ़ा उसमें ये बात बताई है कि जो सूत्र गाथा थी 135 नंबर की द्वितीय भाषा गाथा भाष्य गाथा, उसमें क्या लिखा है, ओरालिये शरीरे। और अभी हमने जो सूत्र पढ़ा 133 पेज पर 133 पर पहले नंबर ऊपर प्राकृत में ओरालियेन ओरालिय मिश्रेण यानी औदारिक ने और औदारिक मिश्र ने बांधा हुआ और उसमें बांधा हुआ, अर्थ दोनों का एक है। औदारिक मिश्र अवस्था में औदारिक का योग में बांधा हुआ कहो या औदारिक का योग वाले ने बांधा हुआ कहो, एक ही बात। तो प्रयोजनवश सप्तमी का वहां यूटिलाइज किया और यहाँ तृतीय विभक्ति। ये तो मराठी संस्कृत हिंदी वगैरह जानने वालों को ये विभक्ति के प्रकरण समझ में आते हैं, गुजराती नहीं भी आपको नहीं मालूम, स्कूल में गई नहीं, गए भी नहीं, कॉलेज में गए, चलो अच्छा है। देखो ओरालिये शरीरे उसका अर्थ क्या है, देखो
वचन योगों में लिखा
वही तो, उनमें विद्यमान जीव के द्वारा। देखो 358 पॉइंट निकालना 132 पेज पर, 358 نیچے کا بڑا پیراگراف وہی وہی 132 پیج آپ کے سامنے والا. ہاں ابھی اس کے چار لائن ہم پڑھیں گے. یہ دوسری بھاشا کا تھا یوگ مارگنا میں پرکرت ارتھ کی گویشنا کرنے کے لیے اوتیرن ہوئی ہے وہ جیسے اورا لیے سریرے. اب اس کا ارتھ کیسا کیا دیکھو, ایسا کہنے پر اوتارک کا یوگ, اوتارک مشر کا یوگ, چار منو یوگ, چار وچن یوگ کے بھیدوں میں ودیمان جیو کے دوارا, ان میں ودیمان جیو میں لگائے نا سپتمی لگائے, اس میں کرتے اس میں ودیمان جیو. اب یہاں آنا اس 133 پر 360 کا دوسرا پوائنٹ, پرنتو چورنی سوتر میں تو ملا اورا لیے نا اورا لیے مسے نا, اس پرکار تریتیا وبھکتی کا نردیش کیا ہے. یعنی اس میں کیا ہے, اس نے ایسے جیون نے اس کے ساتھ لکھا ہے سات بدھ, چار پرکار کے ابھیون کے سات بدھ, پرنتو اس کا تریتیا کا ایگزیکٹ ارتھ کیا ہوتا ہے, ایسی اوستھا والے جیون نے. وہاں لکھا تھا ارتھ ان بھیدوں میں ودیمان جی, اور ان کہیں کہ اس بھید سہت جیون نے باندھا. یعنی کوئی بات نہیں ہے, تو واقع رچنا کا پھیر ہے, اس میں ارتھ میں کوئی فرق نہیں. ہاں ہاں اس میں تو ایکٹیو پیسیو کی بات ہے, رام نے آم کھایا تو اس نے یعنی تیسری وبھکتی لگائی, تریتیا لگائی, اور آم رام کے دوارا کھایا گیا ہے اس طرح سے اس کا کرتے ہیں. تو وہاں رام لکھا ہم نے پرتھما وبھکتی رکھی, یہ تو بھاوے پریوگ وغیرہ کرتے ہیں, یہ ویاکرن کی وشیشتا ہے. ایک سو بتیس میں پینتیس میں نیچے لکھا ہے 188 چاہیے, 135 نمبر کے گاتھا اس کے بعد 188 نمبر ہے, اور اس کا ارتھ کرتے ہوئے ہندی میں شروع میں تو 135 ڈالا پرنتو بعد میں 129 ڈالا ہے, وہاں پر 188 چاہیے. मैंने ये व्याकरण में विभक्ति ऐसी क्यों लगाई इस पर चर्चा, अर्थ में कोई अंतर नहीं, कोई विशेषता नहीं. यहां लिखा ना विवक्षा के अनुसार, यानी कथन पद्धति के अनुसार कारकों की प्रवृत्ति होती है, कौन सा कारक लगाना सप्तमी के प्रथमा के जो कुछ है, तो वाक्य रचना वैसे होती, वो व्याकरण के नियम के अनुसार. इस प्रकार दूसरी भाषा गाथा की अर्थ विभाषा समाप्त हुई. ये योग के बारे में उन्होंने बता दिया. पहले भाषा गाथा में किसके बारे में बताया था, हाँ वो अलग अलग वेद मार्गना मिथ्या सम्यक मार्गना वगैरह इसकी बात की थी. अब कहते एक तो तदीय भाषा गाथा, इससे आगे तीसरी भाषा गाथा कहते हैं, वह शूद्र सुगम है तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है. अब आगे की गाथा पढ़ेंगे, तीसरे नंबर की भाष्य गाथा. अधसदम अधि उह जोगे होंति भज्जानि पूह भद्राणि भज्जानि च पच्छक्खेषु दोषु च दुर्मथनानेषु. मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इन दोनों उपयोगों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय है. इन नियम से मति श्रुति ज्ञान तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, तथा छद्मस्थ के दो प्रत्यक्ष उपयोगों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है. प्रत्यक्ष कौन से उपयोग है, अवधि ज्ञान और मन पर देश प्रत्यक्ष है परंतु है तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेदों में मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है और बाकी तीन प्रत्यक्ष है, उसमें हम फिर सकल प्रत्यक्ष, विकल प्रत्यक्ष या एक देश प्रत्यक्ष और पूर्ण प्रत्यक्ष कहते हैं, परंतु प्रत्यक्ष का भेद है। देख अभी इसके बताएंगे। यह तीसरी भाष्य गाथा ज्ञान मार्गणा में पूर्वबद्ध कर्मों के इस क्षपक के भजनीय और अभजनीय भाव की गवेषणा के लिए अवतीर्ण हुई है। वह जैसे अध सुदम अधि उवजोगे ऐसा कहने पर शुद्ध ज्ञानोपयोग में और मति ज्ञानोपयोग में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय है, यही सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। अब कहे मत्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान, ये मत्य ज्ञान क्या होता है अभी तक? मति प्लस अज्ञान, ई प्लस अ, यह होता है मत्य ज्ञान। ये शब्द यानी संधि होगी, जोड़ाक्षर हो गया उसका। और आगे क्या लिखा है? श्रुता ज्ञान। नितिन भाई, श्रुता ज्ञान का अर्थ क्या है? श्रुत अज्ञान यानी कौन सा? कुश्रुत यानी कुमति और कुश्रुत। मत्य ज्ञान का अर्थ होता है कुमति ज्ञान और श्रुता ज्ञान यानी कुश्रुत ज्ञान। उनका भी यहीं पर संग्रह कर लेना चाहिए, क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि एक इंद्रिय में इतने लंबे काल तक बांध के आया है तो वहां तो कुमति कुश्रुत ही है, तो उसको भी इसी मति श्रुत में उसको भी गर्भित करके बताएं। हाँ, मत्य ज्ञान किया ना, मति अज्ञान। क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान उपयोग सामान्य की अपेक्षा उनसे इनमें कोई भेद नहीं। उपयोग सामान्य की बात की है वहां पर, वो तो मिथ्याय के समय के इसका भेद नहीं किया है। इसलिए इन चार उपयोगों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। कौन से चार उपयोग मंजू बे? मति शुद्ध और कुमति कुशल, क्योंकि ये चारों उपयोग इस क्षपक के कर्म स्थिति के भीतर नियम से संभव देखे जाते हैं। ये तो होते ही है अवश्य। भज्जानी च पच्छखेसु दोषु ऐसा कहने पर छद्मस्थ के जो प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान रूप दो उपयोग होते हैं, छद्मस्थ के प्रत्यक्ष है? पहले में पहले छद्मस्थ के ज्ञानों की बात दी थी, सात उपयोग हमने लिए थे, तो छद्मस्थ के लिए कौन से प्रत्यक्ष है? तो अवधि और मन परे ज्ञान। उनमें पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है, यह सूत्र का अर्थ है, क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के समान ये दोनों उपयोग इस क्षपक की पूर्वावस्था में अवश्य ही होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं उपलब्ध है। यानी वो अवधि ज्ञान प्राप्त किए बिना ही, मन परे ज्ञान प्राप्त किए बिना ही क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो सकते हैं। ये अर्थ हुआ ना इसमें? यहाँ इस सूत्र में अवधि ज्ञान का निर्देश करने से ही विभंग ज्ञान का भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे हमने मति श्रुत में कुमति को श्रुत ले लिया, ऐसे अवधि ज्ञान में को अवधि यानी विभंग ज्ञान को भी गर्भित कर लेना, क्योंकि उसका भी उसमें अंतर्भाव हो जाता है। अब इसी अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए आगे के विभाषा ग्रंथ को कहते हैं विभाषा। अब इस तीसरी भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है। सुदनाने अन्नाने मदिनाने अन्नाने एदेशु चतुषु उवजोगेषु पूर्वबद्धा कम्माणि पूर्वबद्धानि नियमाति। श्रुत ज्ञान, श्रुत अज्ञान, मति ज्ञान और मत्य ज्ञान, इन चार उपयोगों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं। हमने देखा ना, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व में पूर्वबद्ध। मिथ्यात्व में पूर्वबद्ध का अर्थ होता है कुमति कुश्रुत में पूर्वबद्ध, सम्यक्त्व में पूर्वबद्ध मति श्रुत में लिया। ओहि नाणे अन्नाणे मणपज्ज वनाने एदेशु तिसु उवजोगेशु पूर्वबद्धानि भजी यौवानि अवधि ज्ञान अवधि अज्ञान और मनपरे ज्ञान इन तीन उपयोगों में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो मनपरे के साथ कुक क्यों नहीं लगाया, ये अवधि के साथ अवधि अज्ञान लगाया, मनपरे ज्ञान के साथ मनपरे अज्ञान नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया मालूम? हाँ बोलो, कौन बताना चाहते? आपने मालूम है मंजू बहन, ये मात्र मुनियों के होता है, छठे से लेकर कहाँ तक? बारहवें तक। मुनियों के ही मनपरे ज्ञान पाया जाता है। अवधि ज्ञान जो है वो कहाँ से कहाँ तक? चौथे से बारहवें तक, परंतु कुअवधि भी होता है। वैसा यहाँ मनपरे ज्ञान में कुमनपरे है ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो तो मात्र मुनियों के ही पाया जाता है। ये लोग कहते हैं हम इनके मन की बात जानते हैं, उनके हमारे ख्याल में आते, वो कुछ नहीं, उसको मनपरे ज्ञान नहीं कहते, वो टेलीपैथी इज नॉट मनपरे ज्ञान। वो शुद्ध ज्ञान का कुछ विशेष है। ये दोनों सूत्र सुगम है। इस प्रकार तीसरी भाष्य गाथा की विभाषा समाप्त हुई। एथो चौथी भाष्य गाथा है समुकीर्तना, इससे आगे चौथी भाष्य गाथा की समुकीर्तना करते हैं, यानी ये गाथा बताएंगे। यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ ऊपर बताते हैं गाथा है। कम्माणि अभज्जानि दो अणगार चक्षु दंशन वजोगे अधो हि दंशने पुनः उवजोगे होंति भज्जानि। अनाकार चक्षु दर्शन उपयोग यहाँ नंबर नहीं डाला, 137 ब्रैकेट में और लास्ट में 190, क्या कहते हैं? अनाकार चक्षु दर्शनोपयोग। यह अनाकार क्यों लिखा? ज्ञान को साकार कहते हैं, साकार यानी वो विशेषताओं को जानता है वो साकार, और दर्शन है विशेषताओं का ग्रहण नहीं है, सामान्य का ग्रहण। सामान्य का अर्थ होता है उसके अस्थि है इतना ही ग्रहण होता है, उसको दर्शन कहते हैं। तो उसको अनाकार कहा। तो अनाकार कौन कौन से दर्शनोपयोग है? चक्षु दर्शन उपयोग और अचक्षु दर्शन उपयोग। अचक्षु दर्शन उपयोग तो जीव को तो अनादि से है, बारहवें गुण स्थान के अंत तक रहेगा। चक्षु दर्शन किसके होगा? चतुर इंद्रिय पंच इंद्रिय जीवों के होगा। तो भले एक इंद्रिय में इतना लंबा काल तक है वहां तो अचक्षु दर्शन तो था ही था, वहां बद्ध कर्म भी है ही। पंच इंद्रिय में आया है मनुष्य में तो उसके चक्षु अचक्षु दोनों है, उसके भी अचक्षु तो है ही, तो वहां बंधा हुआ कर्म तो पाया जाएगा, क्योंकि बारंबार ज्ञान उपयोग होता है तो उसके पहले दर्शन उपयोग पूर्वक ही होता रहता है। तो कहते अनाकार चक्षु दर्शन उपयोग और अचक्षु दर्शन उपयोग में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के अभजनीय है, कार्य क्या है? नियम से है। तथा अवधि दर्शन उपयोग में पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है, क्योंकि अवधि ज्ञान भी भजनीय में ला रहा था, अवधि ज्ञान के साथ बंधा हुआ, तो जिसके अवधि ज्ञान है उसके साथ अवधि दर्शन होगा, तो ये भी भजनीय में डाल दिया। नंबर बताए ना मैंने, यहाँ नंबर नहीं डाले हैं, शुरू में ही बताया था कि शुरुआत में भी और लास्ट में भी इसके नंबर नहीं, वो 137 और 190 ऐसे दोनों ही नंबर डाले। यह चौथी भाषा गाथा दर्शन मार्गणा के विषय में पूर्वबद्ध कर्मों के इस क्षपक के भजनीय और अभजनीय स्वरूप से अस्तित्व की गवेषणा करने के लिए अवतीर्ण है। वह जैसे कम्माणि अभज्जानि दो ऐसा कहने पर चक्षु दर्शन उपयोग और अचक्षु दर्शन उपयोग में विद्यमान जीव के द्वारा है ना मैं लगाए उसमें विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के नियम से पाए जाते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्योंकि इन दोनों उपयोगों का इस क्षपक के कर्म स्थिति के भीतर निश्चय से संभव देखा जाता है, संभव ने वो पाए जाते ही है। इस सूत्र में अहंगारों व जोगों ऐसा सामान्य निर्देश करने पर भी परिशेष न्याय से अनाकार उपयोग इतना ही लिया है। परिशेष न्याय ने शेष बच्चे को भी उसमें इंक्लूड करना है।
हाँ हाँ, ये तो कर्म चक्षु दर्शन को भी कर्म स्थिति के भीतर निश्चित से संभव देखा जाता है, पर इसे कर्म स्थिति के एक ही लेने का लंबित असर है।
शपक के लिए कर्म स्थिति की बात, कर्म स्थिति प्रमाण रहकर जब वो शपक होगा मनुष्य में आया है तो चक्षु दर्शन बिना कैसे होगा उसका। तो परिशेष न्याय से चक्षु दर्शन उपयोग का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शेष दो छद्मस्थ उपयोगों का सूत्र में पृथक निर्देश देखा जाता है। कौन से शेष दो? अवधि दर्शन की तो अलग से वहां बताई बात है। अध ओहि दंशने पुनः ऐसा कहने पर अवधि दर्शन उपयोग में विद्यमान जीव के द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपक के भजनीय है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अवधि दर्शनावरण का क्षोभ सब जीवों में संभव रूप से नहीं उपलब्ध होता, यानी वो होता ही ऐसा नहीं है। अब इस प्रकार का इस भाष्य गाथा का अर्थ सुगम है ऐसा करके उसके विषय में अन्य दूसरी विभाषा आरंभ नहीं करनी चाहिए ऐसा कथन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो अश्विन।